तो जब जब आप पर पदार्थों को देखेंगे तो आप में राग द्वेष की परिणति उत्पन्न होती है। तो उसलिए यहाँ कहा कि जो कोई संयोग है वह तो मेरे ज्ञान के ज्ञेय है, वह ना मुझे कोई मदद करेंगे ना मुझे कोई वह तकलीफ देंगे, ना वे इष्ट है ना अनिष्ट है, ना वे प्रतिकूल है ना अनुकूल है। इसलिए जो कोई संयोगी पदार्थ है वे तो ज्ञेय है, वह जानने योग्य है। इसमें आप कोई राग द्वेष के परिणाम भी करो नहीं, उसका आश्रय भी नहीं लो, उसको आप त्याग भी नहीं सकते, क्योंकि जो पदार्थ आपका नहीं है उसका आप त्याग कर सकते हो क्या? आप यहाँ बैठे बैठे कहोगे ये रे ये माइक जो आज से मैं त्याग देता हूँ, क्यों क्यों त्याग दे रहे हैं? बस मेरा त्यागना है। तो वो तेरा है क्या पहले? नहीं। तो जो अपना नहीं होगा उसका हम कैसा त्याग कर सकते हैं? इसलिए क्या कहा, जो संयोग है वह पृथक है, इसलिए वह ज्ञेय है, और वो हेय नहीं हो सकता है, क्योंकि जो अपना नहीं है उसका हम त्याग कैसा कर सकते हैं? अब क्या कहते हैं, वह जो पर पदार्थ है उस पर पदार्थ का वह भी वो मेरे लिए उपादेय नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसका ग्रहण करूं या उसी के ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेट करूं या मेरा उपयोग वहां लगाऊं तो ये छद्मस्त जीव जो है, अभी तो हम मिथ्या दृष्टि की बात करते हैं, बाकी छद्मस्त को हटाओ, तो यह जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह जब पर पदार्थ पर देखता है तब उसको राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। इसलिए उसका आश्रय लेने जाए तो वहाँ उसके राग या द्वेष की उत्पत्ति होगी। इसलिए यहाँ संयोगी जो संयोगी पदार्थ जो कुछ है, जो संयोग है वह मेरे से भिन्न है, पृथक है, इसलिए उसे केवल ज्ञेय कहने में आया। अब दूसरी बात, संयोग में ये शरीर मन वाणी और बाकी तो सब, हाँ जी, मैं जो जीव तत्व हूँ जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है ऐसा छोड़कर बाकी अन्य सभी अनंत जीव पर में आए। अगर मैं आत्मा हूँ तो मेरी अपेक्षा बाकी सब अनात्मा है, सिद्ध भगवान भी, क्योंकि उनके जो ज्ञान दर्शन है वो मेरे किस काम का? उनके ज्ञान से तो वे जानेंगे, मेरे ज्ञान से मैं जानूंगा। इसलिए मेरा जो जीवत्व है, मेरा जो ज्ञान जानपना है वह मेरे ज्ञान दर्शन स्वभाव से, प्रकृत ज्ञान दर्शन स्वभाव से मेरा कोई लेना देना है नहीं, इसलिए उन्हें ज्ञेय में डाला, परतत्व में डाला, संयोग में डाला। अभी देखो आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं तो आप तो अरहंत सिद्धों को मानते हैं, बाजू वाला हो सकता है जो मानते नहीं होंगे, और कोई मानते भी हो तो सच्चे देवगुरु शास्त्र को नहीं मानते होंगे, तो वो उनके संयोग में होते हुए भी नहीं हुए जैसा है उनके लिए। तो यहाँ तो कह रहे जो संयोगी पदार्थ है वह तो सिर्फ ज्ञेय है, वो ना ही है और ना उपाधि है। अब जो विभाव भाव जो है विपरीत, विभाव कैसे है? विपरीत है। तो विभाव कहाँ पैदा होता है? तो कहते मुझ में पैदा होता है, मेरे में, लेकिन वो स्वभाव भाव नहीं है इसलिए उसे विभाव कहा। तो विभाव को रखना अच्छा क्या? नहीं, तो उसको छोड़ देना, उसका त्याग करना। संयोगी पदार्थ का तो त्याग नहीं हो सकता है, और अपने स्वभाव का जो सामर्थ्यशाली ऐसा स्वभाव है उसका त्याग करेगा तो किसका आश्रय लेगा? इसलिए विभाव भाव को त्याज्य कहा है, हेय कहा है, बराबर। और इसलिए वो जो विभाव परिणाम है वह केवल हेय ही है, ज्ञेय है जरूर लेकिन वो देखते रहने जैसा नहीं है। हाँ जी,
देखो यहाँ जो बातें कही है ना, वही बात जो अभी कही थी उसी पर और बताती हूँ कि ये जो सातों ही तत्व है वो तो ज्ञान के ज्ञेय तो है ही। अब यहाँ जो बात हो रही है ये तो मुख्यतः श्रद्धा की अपेक्षा चल रही है कि पुण्य परिणाम, कल बात आई थी ना कि पुण्य को वो जाने लो प्रयोजनवान, यानी जानने मात्र के लिए प्रयोजनवान है, तो जानेगा नहीं तो उसका त्याग कैसे करेगा। तो करने धरने की बात नहीं, श्रद्धा में उसको कैसा मानना है उसकी बात चल रही है। संयोग को हटाना नहीं, ना जुटाना है, कुछ नहीं करना, परंतु श्रद्धा में ये परद्रव्य है और बस ये ज्ञान के ध्येय इतना स्वीकार करना है। वैसे राग जो है वो अभी है, वर्तमान में है, छोड़ नहीं सकता अभी उसको, क्योंकि उत्पन्न हो रहे हैं ना, कि उसका स्वामी तो है नहीं है, क्योंकि मुनि भी अपने में आने वाले राग को जानते हैं, करते नहीं है वो, तो श्रद्धा में उसको है ये तरीके से जाना, स्वीकार करना। और ऐसे जो अपना स्वभाव है वो श्रद्धा में उसको उपादेय तरीके स्वीकार करना है, यानी जो का त्यों श्रद्धा नेचर छड़ाला में आया है, ये सात तत्वों का जो का त्यों श्रद्धा। ज्ञान के तो सारे ही ज्ञेय है, ज्ञान के लिए तो सब ज्ञेय है, उसमें वो स्व और पर ऐसा भेद डालेगा, उसमें स्व किसको रखना और पर किसको रखना, राग भी पर में जाएगा, संयोग भी पर में जाएंगे, और एकमात्र जो जीव तत्व है वो स्व में आएगा। और श्रद्धा के लेवल पर ये सारा जो है संयोग जो पर पदार्थ है वो ज्ञेय है, विभाव हेय है, और स्वभाव जो है वो उपादेय है।
अभी बात ऐसी है ना, देखो ज्ञान कैसा है, किसको नहीं जानेगा, सबको जानेगा, तो ये सातों तत्व जो है या यहाँ जो जो बातें बता रहे वो तो जानेगा तो सही, लेकिन केवल जानकर इतना ही उसे संतुष्ट नहीं होना है कि मैंने जान लिया, लेकिन वे त्याग जो है ये भी तो ध्यान में होना चाहिए ना। और उसको त्यागना यानी क्या करना, कि उसके तरफ न देखते हुए अपने स्वरूप का अवलंबन लेगा तो वो उत्पन्न ही नहीं होगी, तो वो हेय हो गए। और हम हेय है कहने से क्या करते हैं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आना नहीं चाहिए, उसके पीछे लगते हैं, जिसके पर्याय के पीछे लगते हैं, जो उत्पन्न होती है और होने के बाद असंख्यात समय के बाद ज्ञान में आती है उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, वो तो पहले से मर गया है, निकल गया है, खत्म हो गया, व्यय हो गया उसका। अभी जिसका व्यय हो गया है उसको क्या तुम रोकोगे, वो तो ऑलरेडी नष्ट हो चुका है। लेकिन ये सारे जो प्रवाह रूप से जो विभाव भाव है वो हेय है, यानी उसके आश्रय करने योग्य नहीं है इस अपेक्षा से। और फिर क्या कहते हैं, वो उपादेय भी नहीं है। और मैंने ये भी समझाया कि नेय तो होंगे ही होंगे। अब आगे कहते हैं जो सामर्थ्यवान ऐसा जो स्वतः स्वभाव है, सामर्थ्यवान यानी अनंत प्रकार से अनंत वैशिष्ट्यों से युक्त है, क्योंकि स्वभाव जो होता है वो हमेशा परिपूर्ण होता है, स्वभाव कभी अधूरा आधा अधूरा नहीं होता है, इसलिए वो सामर्थ्यवान ऐसा होता है कि उसका स्वभाव प्रूव करने के लिए अन्य किसी की मदद लगे, ऐसा किसी का स्वभाव नहीं होता। स्वभाव तो एक एक गुण की अपेक्षा से ले लो तो अलग अलग है, ख्याल में, और सबको मिलकर लेंगे तो द्रव्य भी ले सकते हैं आप, क्योंकि आत्मा देखो हमने देखा ना सुखमय है, ज्ञानमय है, चारित्रमय है, तो ये उसके स्वभाव हो गए ना, तो स्वभाव तो एक एक गुण की अपेक्षा से भी ले सकते हैं। और ये अनंत गुणों का पिंड ऐसा जो एक उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञानमय हूँ, तो वो केवल ज्ञानमय है ऐसा नहीं है, यानी सिर्फ ज्ञान है इतना ही नहीं है, उसके साथ साथ अन्य भी उसमें अनेक पहलू है, ये हमको देखना है। अभी आपके जो प्रश्न का उत्तर था वो मिल गया क्या? अभी इसमें कल जो हमने बात की थी कि जो संयोग है वो मेरे से जुदे है इतना होते हुए भी, यह जो संयोग की अपेक्षा से मैं सुखी या मैं दुखी ऐसा मानता है। और संयोग कैसे है, अरे आज बाजू में कौन बैठा है? ये तो बाजू में नहीं बैठना चाहिए। संयोग में कोई आ गया ना दूसरा, रोज कोई फलाना आता था, अभी समझ लो मेरे बाजू में आज डॉक्टर साहब बैठे, कल उठ के कोई दूसरे बैठे, कहाँ आया? संयोग तुझे क्या करने वाला है? वो सुने नहीं, देखो देखो एक लता बेन बात ऐसी है कि रोज ही में एक ही जगह पर बैठने से वो जगह के प्रति राग तैयार होता है, और बाय चांस कभी अपनी जगह दूसरे किसी ने ली, वो अभी आप जानो भाई, मैंने तो कभी नहीं किए इसलिए मुझे मालूम नहीं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम जब पढ़ते थे यानी जब जाके सारे शिविरों में अटेंड करते थे तो मान लीजिए 6 बजे प्रवचन चालू होना है तो हम वह 5:30-6 बजे ही पहुंचते थे ताकि हमारी जगह भी कोई बैठे ही नहीं, ख्याल में। और हमको तो क्या है देरी से आके भी अपनी जगह चाहिए, ऐसी गड़बड़ है। चलो बात क्या है कि संयोग की अपेक्षा से मुझे अच्छा है, संयोग में कोई मेरा मित्र बैठा है या मेरे पहचान वाला बैठा है, अन्य कोई तीसरी व्यक्ति बैठी तो फिर उसको हम अच्छा नहीं मानते। वो मैं मेरी बात बता था आपके नहीं, आप इतना क्यों नाराज हो रहे? तो ये संयोग जो है वह मेरे ज्ञान का गेय है, इतना समझना है, बात ख्याल में आ गई। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक पृष्ठ क्रमांक 44 पे। कल हमने 3 बातें देखी थी कि आत्मा तो है तो एक ही प्रकार का, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से हमने उसके 3 प्रकार देखे थे, पूर्ण अशुद्धता वाले मिथ्या दृष्टि जीव, पूर्ण शुद्धता वाले केवली भगवान और आंशिक शुद्धता वाले साधक, इस प्रकार जीव के 3 प्रकार हुए, ये हमने कल देखा था। अब उसी का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एक स्वरूप शुद्ध चिदानंद की दृष्टि न हो उसे शुद्धता बिल्कुल नहीं है, उसे तो सर्वथा अशुद्धता पर्याय में है। ये राग देश जो है, मोह है, ये सारी जो अशुद्धता है वो कहाँ है? पर्याय में है। ये कब से है? तो पर्याय में ऐसी अशुद्धता अनादि से है, और अनादि से पर्याय में अशुद्धता होते हुए भी इस जीव आज तक उसके स्वभाव में लेश मात्र अशुद्धता प्रवेश नहीं की है। तो कह रहे हैं इसे साधक और बाधक ऐसे 2 भाग नहीं है, इसे मिथ्या जीव एकांत बाधकता रूप 1 भाग में खड़ा रहता है। यहाँ उन्होंने 2 भाग किए थे ना, एक सरा चारित्र वाला और एक इतरा चारित्र वाला, ऐसे 2 भाग किए थे। लेकिन सरा चारित्र उसी को होगा कि जिसे वितरा चारित्र होगा। अब जिसे चारित्र ही नहीं है तो वह तो एक ही भाग में खड़ा है, ऐसा कहा। कौन से? बाधकता रूप यानी राग द्वेष के जो परिणाम है, मोह के परिणाम है, जो इस जीव को संसार में रखड़ाते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं करा देते, इसलिए उसको बाधक कहा गया। जिस शांति की इच्छा करता है वह बाहर में से नहीं आती, अंतर प्राप्त की प्राप्ति है, उसकी प्रतीति नहीं, किंतु पुण्य से लाभ मानता है, वह पूर्ण मिथ्या दृष्टि है, कोई उसमें गुंजाइश नहीं बोलते, यानी 1% तो बिल्कुल पूर्ण। किसको कहा? जो बाहर से शांति मिलती है, यानी मैं पुण्य करूं तो मुझे शांति कैसे भैया पुण्य करने से? अरे पुण्य करेंगे तो हमको तो स्वर्ग में जाने को मिलेगा, विवाह तो मौज ही मौज, विवाह से हम विदेश क्षेत्र में जाएंगे, वहां भगवान के दर्शन करेंगे, समाचरण में अटेंड करेंगे। तो ये क्या मानता है कि पुण्य से मुझे लाभ होगा, ऐसा कहता है। देखो देखो क्या कहते हैं कि अंतर प्राप्त की प्राप्ति है, उसकी प्रतीति नहीं है, यानी ये जो अंत मेरा स्वरूप ही शांतमय है, शांतता से भरा पड़ा हुआ है और वह है अभी मेरे पास, वो जो प्राप्त है उसकी ही प्राप्ति करनी है, लेकिन उस पर एक रंच मात्र भी भरोसा नहीं है। और क्या कहते हैं, लेकिन पुण्य से लाभ मानता है, यानी पर पदार्थों से यानी संयोगों से लाभ मानता है, वह क्या है, पूर्ण मिथ्या दृष्टि है। अनादि से व्यक्त पर्याय में पूर्ण अशुद्धता है। यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था, और क्या पढ़ा था वो या भूल न जावे इसलिए उसको दोबारा पढ़िए। अब दो नंबर का जो पॉइंट है, एक स्वरूप शुद्ध चिदानंद की दृष्टि पूर्वक लीनता हुई, पूर्ण शुद्धता हुई, उसे अशुद्धता नहीं रही, वे केवल ही भगवान है। यानी क्या हुआ कि अपना जैसा स्वरूप है उसमें एकाग्र हो गया, उनका उपयोग एकाग्र हो गया, तो उनको पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्राप्त हुई। और वो पूर्ण शुद्धता जो प्राप्त हुई तो उससे क्या हुआ कि बिल्कुल अशुद्धता नहीं रही, और कहते हैं वे केवली भगवान बने, उन्हें परिभ्रमण नहीं रहा, यानी अभी उनके संसार में रखड़ेने का है नहीं। पूर्ण शुद्धता जो शक्ति में है उसे पूर्ण प्रकट की है, वे आत्मा केवल ज्ञानी परमात्मा हो गए, पूर्ण हो गए। तीसरा पॉइंट, एक स्वरूप शुद्ध चिदानंद की दृष्टि पूर्वक जितनी लीनता हुई है उतनी साधक दशा है, तथा कुछ अंशों में राग शेष है इतना बाधक पना है। इस प्रकार यहाँ दो भाग पड़ते हैं, मेरी पर्याय में राग आता है वह हेय है, पर की अवस्था और शरीर की अवस्था पर की स्वयं से होती है, ये पर के बाद की लगा देना चाहिए, यानी छोड़कर थोड़ी सी जगह। क्या कहते हैं, ऊपर लिखा है ना पहले लाइन में, पर की अवस्था और शरीर की अवस्था पर की स्वयं से होती है वह ज्ञेय है। जो अपराध होता है यानी अपराध यानी राग के परिणाम होते हैं वह हेय है, और स्वभाव की दृष्टि पूर्वक लीनता हुई वह उपादेय है। इस प्रकार दो अंश साधक को वर्तते हैं, साधक में बाधकपना है इसलिए उसे साधकपना कहते हैं। यदि बाधकपना बिल्कुल ही न हो तो वह केवल ज्ञानी हो जाए, और यदि सर्वथा बाधकपना हो तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। इसलिए साधक को आंशिक बाधक और आंशिक साधकपना है, ये साधक पना चाहिए उधर, आंशिक साधक है नहीं, क्योंकि क्या कहा, इसलिए साधक को साधक है ऐसा नहीं, साधक पना है। जैसे ले श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि श्रद्धा जब तक सही नहीं होती है तब तक उस ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान नहीं कहते, होता तो सभी के साथ, लेकिन प्रथम सम्यक दर्शन को लिया है ना, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी दृष्टि पूर्वक, यानी जो त्रिकाली स्वभाव है उसकी दृष्टि करना, श्रद्धा करना, उसको ज्ञान में लेना, और वो मैं ऐसा ही हूँ ऐसा प्रतीति में लेना।
दृष्टि का अर्थ ऐसा लेना कि यह मैं हूँ, उसे दृष्टि कहते हैं, अकेले जानने को दृष्टि नहीं कहते हैं, जिसमें मैं पना स्थापित होता है वो दृष्टि का विषय कहलाता है। शुद्ध चिदानंद ही मैं हूँ ऐसी जहाँ प्रतीति हुई और उस पूर्वक जो लीनता हुई, दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय कहते हैं ना, दृष्टि का विषय में मैं जिसने स्थापित करना,
मैं पना जिसने स्थापित। देखो बात तो ऐसी है, कि हम शास्त्र के माध्यम से, आगम के माध्यम से, या गुरु या तीर्थंकर के उपदेश से आत्मा के बारे में तो बहुत सुना है, आत्मा के बारे में बहुत समझा है, लेकिन आत्मा को नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? तो ये समझना ज्ञान की पर्याय है, बहुत बार उसने सुना जाना, लेकिन जब तक श्रद्धा सही नहीं हो रही है तो उसको समझा भी नहीं कह पाएंगे। समझ में आया? यानी अभी ख्याल में आ गया ना इसमें, बाकी श्रद्धा हुई कि नहीं वो आपकी बात है। जैसे नेंदी पीतर में जो तिखास व्यक्त हुई है वह प्राप्त की प्राप्ति है, यानी लेंडी पीपर में स्वयं उसमें तिखास है, वो जो है वही तो व्यक्त हुई, तो इसलिए कह रहे हैं वह प्राप्त की प्राप्ति है। 64 फुटी तिखास अर्थात पूर्ण, 64 पैसे अर्थात रुपया। इंदुबेन, हाँ लास्ट टाइम बताया था ना, 16 ने लेंडी पीपर जब तक कच्ची है तब तक पूर्ण अशुद्ध है, और पकी दशा रूप 64 फुटी पूर्ण प्रकट हुई वह पूर्ण शुद्ध है। यदि 50 फुटी तिखास प्रकट हुई है तो उतनी शुद्ध, और 14 फुटी अधूरी अर्थात अशुद्ध है। इस प्रकार इसमें 2 भाग पड़ते हैं। जैसे वैसे ही आत्मा ज्ञान और आनंद से भरा हुआ है, प्राप्त की प्राप्ति होती है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव पने से पूर्ण है, स्वभाव में शांति ज्ञान वीर्य पूर्ण विद्यमान है। जब अब जिन्हें पूर्ण शक्ति की प्रतीति नहीं, निमित्त और पुण्य की रुचि है, वे पूर्ण अशुद्ध है। क्या कहा? श्रद्धा की बात आई ना मैंने, क्या कहा देखो, जिन्हें पूर्ण शक्ति की प्रतीति नहीं है, यानी आत्मा में क्या क्या शक्ति है, देखो देखो अभी क्या कहते हैं। ओ मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, वो चकमक का पत्थर होता है, तो पत्थर के बारे में हमको इतनी गारंटी रहती है कि अगर यहाँ पूरा पूरा वखार यानी गोडाउन भरा हो काय से कपास का, और हम वो चकमक के पत्थर से एक चिंगारी उसको जला निकाले, तो एक चिंगारी सारे कपास को भस्मसात कर सके, ऐसी उसमें शक्ति है, इस बात का तो हमें बिल्कुल भरोसा है। लेकिन अगर मैं अपने में ही मेरा ध्यान जो पर पदार्थ में जो भटक रहा है उसको ही मैं मुझ में कॉन्सेंट्रेट करूं तो मुझे ही केवल ज्ञान होगा, इसकी प्रतीति नहीं है, होता होगा। आप बोलते हैं तो मां ने क्या करें, ऐसा ही जीव मानते हैं, इसकी प्रतीति पूर्ण प्रतीति नहीं। तो क्या कहा? अब जिन्हें पूर्ण शक्ति की प्रतीति नहीं, और क्या है, निमित्त और पुण्य की रुचि है, वे पूर्ण अशुद्ध है। पूर्ण अशुद्ध है यानी क्या सुशीला बेन? बराबर ख्याल में आ गया, बहुत बढ़िया। देखो जो निमित्त ऊपर ही डालते हैं ना, क्या करे साहब, हम अपना जिंदगी व्यर्थ बर्बाद किए, क्यों, क्या हमें कोई साचा गुरु ही नहीं मिला, तो दृष्टि कहाँ है, निमित्त के ऊपर। और तुम क्या इधर उधर जाते हो, चलो हमारे साथ, हमारे गुरु है। हाँ तुम 12वां गुणस्थान वाले की याद कर रहे हो, हम तो मम्मी पापा की याद कर रहे हैं। अरे गुरु कुछ नहीं देता भाई, अगर गुरु ही देता हो तो गुरु दे सके, और तीर्थंकर नहीं तो तीर्थंकर से गुरु बड़ा हो गया। क्यों? अगर गुरु भी देता है तो वो तो महागुरु है, परम गुरु है, और वे किसी को एक को सम्यक दर्शन देवे और अन्य को नहीं देवे, और एक को ही शायद सम्यक दर्शन देवे अन्य को नहीं देवे, ऐसा नहीं होगा। अगर वही दे सकते हैं और देना चाहते हैं तो सबको दे, क्योंकि सामने वृत्ति है ना उनमें कि नहीं ये हमारा फेवरेट स्टूडेंट है, क्या हमारा अनुयायी बहुत अच्छा है तो उसको हम शाही सम्मेलन दर्शन देंगे बाकी लोगों ने, ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो भाई प्रत्येक द्रव्य की जो स्वतंत्रता है वह स्वतंत्रता ख्याल में आते ही अपने में वितरकता आ जानी चाहिए, वितरकता आ जानी चाहिए ना कि हमें में पर का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना पर मेरा कुछ कर सकता है। जब ऐसा वस्तु का स्वभाव है तो पर के तरफ झांकने की पर के तरफ देखने की आवश्यकता ही कहाँ रही, लेकिन इस बात की प्रतीति नहीं इसलिए वह पूर्ण अशुद्ध है ऐसा कहते हैं। शुभाशुभ भाव शुभाशुभ राग दया दान आदि से लाभ मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, और जिन्होंने स्वभाव का भान करके पूर्ण शुद्धता प्रकट की है वे अरहंत परमात्मा है। अब साधक की बात करते हैं। ध्रुव स्वभाव आनंद खंड की है, किनकी बात कर रहे हैं? साधक यानी चतुर्थ गुण स्थान से आगे बारहवें तक के बात है। और क्या कहते हैं, पुण्य पाप की रुचि छोड़ी है, स्वभाव की श्रद्धा करके जितनी आंशिक लीनता की है उतना आंशिक चारित्र है, और जितनी स्व में लीनता नहीं है और राग भाव शेष है उतनी अशुद्धता है। इस प्रकार का द्वैत साधक भाव में वर्तता है। पूर्ण शक्ति की प्रतीति करके लीन हों यह लाभ है। ऐसे प्रयोगों की जिन्हें खबर नहीं है वे भले जैन हो लाखों दान में देवे, आजकल लाखों तो कुछ नहीं करोड़ों दान में देवे अब जो, अथवा वे साधु भी हो जावे किंतु फिर भी यदि वे निमित्त और पुण्य से लाभ मानते हैं तो उन्हें शक्ति की प्रतीति नहीं है, वे मिथ्या दृष्टि ही है। क्या कहा? ही लगाया, अन्य कुछ मत मानो बोलते हैं। शक्ति की प्रतीति नहीं यानी क्या? हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये किसी को इस पर कुछ प्रश्न है अभी? हाँ, साधक को भी शुभ राग आता है किंतु वे उसे आदरणीय नहीं मानते। यहाँ साधक की बात चलती है। धर्मी जीव को स्वरूप की दृष्टि और लीनता अंगीकार करने योग्य है क्योंकि उसका फल मोक्ष है। स्वयं की लीनता की कमी से क्या कहते, देखो ये मुनियों की बात कर रहे हैं। स्वयं की लीनता की कमी से यानी अपने अंतरंग में यानी शुद्धोपयोग में अधिक काल वो नहीं टिक सकते, वो उनकी स्वयं की कमजोरी है। इसलिए क्या कह रहे हैं, स्वयं की लीनता की कमी से पांच महाव्रत की वृत्ति उठती है जिसका पर अनिष्ट है, राग निमित्त है, इसलिए उसे उपचार से तराग चारित्र कहा है। जब तक पूर्ण वितराग न हो तब तक राग आता है किंतु राग आदरणीय नहीं है। चारित्र तो वितराग भाव रूप एक ही प्रकार का है, तरागता वह चारित्र नहीं है। यदि राग को आदरणीय माने तो उसने स्वभाव को आदरणीय नहीं माना, अतः वह मिथ्या दृष्टि है। यानी क्या हुआ, उसने जो विभाव परिणाम है ना उस विभाव परिणाम को ही अच्छा माना, अभी आप समझ लेना कौन कौन ऐसा मानते हैं अपने तरफ देखते हैं अन्य के तरफ क्या कहा कि राग से धर्म होगा, राग करते करते धर्म होगा। तो ये क्या कह रहे देखो कितनी बढ़िया बात बताई है कि यदि राग को आदरणीय माने तो उसने स्वभाव को यानी किसके स्वभाव को भगवान के हाँ बहन हाँ वो नाम ही भूल गया मैं अश्रुबेन अश्रुबेन बोलते कि मेरे स्वभाव को नहीं जाना तो सब लोग उनके स्वभाव को नहीं जाना ऐसा नहीं लेना सब लोग अपने अपने स्वयं के देखो हम स्वयं के स्वभाव को आदरणीय नहीं मानते क्योंकि हमने तीर्थंकर कहो या अरहंत कहो उनके स्वभाव को नहीं जाना वो तो राग को तो मानते ही नहीं थे आदरणीय अगर ऐसा राग को आदरणीय मानते हो तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति तक नहीं होती और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उनके स्वरूप जैसा ही मेरा भी स्वरूप है तो मैं भी ज्ञान मैं हूँ राग यह मेरा स्वभाव नहीं है तो उसे मैं कैसे आदरणीय मानूं ऐसे इस जीव को अंदर से लगना चाहिए इसलिए कहते हैं राग को आदरणीय माने तो उसने अपने स्वभाव को आदरणीय नहीं माना अतः वह मिथ्या दृष्टि है। धर्मात्मा को भी धर्मात्मा यानी कौन लेना इधर साधक जीव हा? ज्ञानी सम्यक दृष्टि जो है जब तक स्वभाव में पूर्ण एकाग्रता न हो तब तक भक्ति का राग आ जाता है किंतु वे उसे छोड़ने लायक मानते हैं यानी भक्ति का राग भक्ति करना पड़ता है ऐसा नहीं बोल रहे हाँ भक्ति तो करनी चाहिए ना तो उसके ऊपर जोर नहीं है राग करने पर जोर नहीं है तो कहते हैं भक्ति का राग आ जाता है और जब वो ज्ञान का गेय होता है तब तो अंदर से तो ऐसा ही मन मतलब क्या कहते हैं विचार रहता है उनका कि यह भी छोड़ने लायक है और छोड़ने लायक है तो कैसे छोड़ेंगे तो दोबारा अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाएंगे तो अपने आप ये राग छूट जाएगा। यदि राग को आदरणीय माने तो वह मिथ्या दृष्टि है आत्मा पूर्ण शक्तिवान है जैसे लेंडी पीपर में तिखास और हरा रंग अप्रकट है वैसे ही आत्मा का या का लगा लेना ध्रुव स्वभाव न्यायक स्वभाव फिर लेना देखो न्यायक के बाद स्वभाव कॉमा एक इतना लिख लेना क्या कहा देखो वैसे ही आत्मा के बाद का लिखो आत्मा का ध्रुव स्वभाव कॉमा न्यायक स्वभाव कॉमा एक सदृश स्वभाव अप्रकट रूप से है। हाँ जी हाँ न्याय स्वभाव ध्रुव स्वभाव न्याय स्वभाव एक सदृश परिणाम ऐसा लेना एक सदृश स्वभाव अप्रकट रूप से है क्या कहते हैं आत्मा स्वयं जैसा है ध्रुव स्वभावी है न्याय स्वभावी है और उसका जो स्वभाव है वो हमेशा ऐसा का ऐसा चलता रहे चलता रहे चलता रहे ऐसा एक सदृश स्वभाव जो है वो कैसा है अभी अप्रकट रूप से है अनंत गुणों से भरा हुआ है उसकी प्रतीति बिना निमित्त और पुण्य सन्मुख रुचि करे ये करे के बाद जो फुटस्टॉप है वो निकाल दीजिए रुचि करे वह मूढ़ मिथ्या दृष्टि है स्वभाव सन्मुख होने पर विभाव सन्मुख दृष्टि छूट जाती है विभाव आता है किंतु वह आदरणीय नहीं है पूर्ण वितराग न हो तब तक भूमिका के योग्य राग आता है किंतु वह आदरणीय नहीं है। शुभ राग व्यवहार का विषय है किंतु शुभ राग चारित्र नहीं है व्यवहार नहीं है उसका विषय भी है, फिर भी व्यवहारने का विषय असत्यार्थ होने से वह आश्रय करने योग्य नहीं है। देखो क्या कहना चाहते हैं, देखो नीचे बताएं, व्यवहार सॉरी पंच महाव्रत का परिणाम राग है, वह चारित्र नहीं है, फिर भी व्यवहार ने उसे उपचार से चारित्र कहता है। इसलिए महाव्रत को शुभ राग जानकर उसे चारित्र मानने की श्रद्धा को पहले से ही छोड़ो। या तो आदेश दे रहे हैं
तो छोड़ना है महाव्रत को,
क्या क्या
किसको छोड़ना है?
मिलिंद
भाई, मिलिंद भाई बोल रहे
हैं। हाँ मिलिंद भाई बोल रहे हैं। किसको छोड़ना है? अभी
चित्राबेन अच्छी बात है।
नहीं नहीं गलत बता रहे,
छोड़ना तो है ना।
ये तो बम्बई में हीरा मिले जैसी बात है।
देखो
एक दिन एब्सेंट रहे तो उपवास हुआ ना, तो दूसरे दिन फटाफट अच्छा बोल रहे।
देखो ये वाक्य क्या है,
हाँ
देखो महाव्रत
चारित्र है। हाँ सर
देखो ये वाक्य फिर पढ़ना, महाव्रत को शुभराग जानकर उसे चारित्र मानने की श्रद्धा को पहले छोड़ो।
अभी हमने जो अर्थ का अनर्थ मत करना, हमारा नाम बदनाम कर दोगी तुम
तो। हमने देखा था ये ध्येय है उपादेय श्रद्धा में है, अभी है ना महाव्रत को शुभराग जानकर, जाना कि नहीं उसको ज्ञान को, ज्ञान तो सबको जानेगा, आने वाले राग को भी जानेगा, परंतु वो ध्येय है इसी श्रद्धा न होगी। जैसे हम बच्ची पैदा होती है घर में तभी वो पराया धन है इसी श्रद्धा उसी दिन से है, वो जाएगी 20 साल के बाद नदी पर।
भाई यहाँ तो पहले में पहले सुधार कहाँ करना है, तो अपने श्रद्धा में सुधार करना है। यहाँ श्रद्धा कौन सी थी हमारी कि यह जो 28 मूल गुण पालन कर रहे कितना बड़ा चारित्र है उनका हा? और कई कई लोग तो उनको बड़े बड़े पूछ भी लगाते हैं, चारित्र चक्रवर्ती और चारित्र क्या क्या चूड़ामणि और जो भी है, आप हमसे अधिक जानते हैं हा? अरे भाई वो तो ये राग जो है उसको चारित्र मानना, यह जो तुम्हारी श्रद्धा है उस श्रद्धा को तुम सुधारो। तुम जो मुनिराज चारित्र पालन कर रहे हैं 28 मूलगुण पालन कर, उसको सुधारने की कोशिश मत करो, वो तो तुम्हारे हाथ की बस की बात नहीं है। क्यों कि भाई तू तुझे तेरी में जो खोटी श्रद्धा जो वर्त रही है उस श्रद्धा को संभालो, उस श्रद्धा को सुधारो। ये बात का आपको यहाँ बात मतलब उपदेश दिया जा रहा है। फिर से देखना भाई, बहुत डेंजरस बात है, हम नहीं समझ रहे थे कि इतना आप कहीं अलग जगह चला जाएंगे। अच्छा हो गया उज्ज्वला ने पूछ लिया, क्या कहा देखो, इसलिए महाव्रत को शुभराग जानकर यानी उसको उपचार से चारित्र कहा था, लेकिन उपचार का अर्थ वो सत्यार्थ नहीं है, साची बात नहीं है, उसके तो ऐसे ही व्यवहार से या उपचार से चारित्र कहने में आया था। इसलिए महाव्रत को शुभराग जानकर उसे चारित्र मानने की श्रद्धा को पहले से ही छोड़ो। अरे तुम तो मिथ्या दृष्टि, तुम क्या 28 मूल गुण पालन कर रहे हो, काहे को छोड़ने का और पकड़ने का, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। और जो दूसरे कोई पालन कर रहे होंगे तो उनको क्या तुमसे छुड़ाएंगे तुम, ख्याल में भाई। ये हम जो मान रहे हैं क्या कि 28 मूल गुण पालन करने के जो शुभ राग है उसको हम चारित्र मान रहे हैं, तो वो जो हमारी श्रद्धा मानना है ना, मानना मानना, तो श्रद्धा में खोट है तो उसको पहले आप सुधारो।
आप छोड़ो की बात है ना, वो किसको मुनि के लिए लिखा है ना, क्योंकि महाव्रत तो उनको ही है। हम भी की बात नहीं है, मुनियों को भी लिखा है कि नहीं लिखा। जो मानेंगे वो मुनि नहीं रहेंगे। देखो जिसकी श्रद्धा गलत है वो तो समय दृष्टि भी नहीं है। तो ये श्रद्धा में पहले छोड़ो ऐसा जो लिखा है, चारित्र मानना छोड़ो, ये मिथ्या दृष्टि के लिए लिखा
है। जिसकी श्रद्धा ही सही नहीं है वो कहाँ का मुनि रहेगा, तो मुनि की बात नहीं है ना? ये जिनकी श्रद्धा खोटी है उनके लिए कहा। अब आगे क्या बताते, मूल बात क्या है कि स्वभाव में लीनता करना ही चारित्र है। चारित्र तो उसे कहेंगे, क्यों साहब? क्योंकि चारित्र जो होगा वह जीव का कहो या आत्मा का गुण है, तो चारित्र आत्मा में रहेगा या आत्मा के बाहर रहेगा? बाहर रहेगा ना, आत्मा में रहेगा। तो क्या करेंगे? तो कहते हैं कि वो चारित्र किसको कहना, तो जो स्वरूप में एकाग्रता है, अधिक लीनता है, अधिक स्थिरता है, उसको चारित्र कहेंगे। और ये बाह्य में जो राग परिणाम आ रहा है वह तो कैसा है, विभाव, विपरीत भाव, और गुरुदेव की भाषा में कहना हो तो अधर्म, और उससे भी कड़क सुनना हो तो कुंदकुंदा आचार्य कहते वो जहर है, वो विषकुंभ है। हाँ? देखो, यानी भाई वो ऐसा कोई मानता है तो पहले वो बताया कि वैसा मत मानो, और जो उसी में मानकर वैसा चारित्र पालते हैं उनको बता रहे कि भाई वो विषकुंभ है। आगे बात, व्यवहार में तो सत्यार्थ दर्शित है, यानी क्या कहते हैं, व्यवहार में का जो कथन होता है वह असत्यार्थ यानी जो सही नहीं है, सत्य नहीं है, ऐसी ही बातों को बताता है, दर्शित है। यदि ऐसा है तो सराकपने को चारित्र क्यों कहा? निर्मल आत्मा की श्रद्धा ज्ञान दीनता में भूमिका अनुसार शुभ राग आता है, यानी क्या होगा? प्रतिभा आप जानती हैं ये बात क्या कहना चाहते हैं, निर्मल आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता में भूमिका अनुसार शुभ राग आता है, इसका अर्थ आप जानते हैं क्या? जरा जोर से बोलेंगे तो मैं हाँ। नहीं नहीं आपको पता नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, देखो समझ में आना, ये निर्मल आत्मा जो है उसकी श्रद्धा और ज्ञान और लीनता में, तो ये ऐसी लीनता किसको किसको होगी? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनियों की, तो भूमिका अनुसार शुभ राग आता है। चित्राबेन क्या आप कहेगी? किसको कौन सा आएगा, ये मेरा प्रश्न है। सत्य माटूंगा थोड़ी है, अपना दादर थोड़ी है, इधर नहीं बताने का, दादर में बताने। हाँ आप नहीं बता पाए। हाँ अच्छा, अब सुशीला बहन बोलना चाहती, कोई बात नहीं। एक से दूसरा सिक्सर ही मार रहे हैं। कौन सा शुभ राग है, यही तो मैं जानना चाहता हूँ बहन। यहाँ लिखा ना कि भूमिका अनुसार शुभ राग आता है, तो कौन सा शुभ राग आता है देवेंद्र भाई बताएंगे। जोर से बोलना, बराबर पर शब्द इधर का उधर, उधर का उधर लगा लिया आपने, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने। देखो क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी दूर बैठे ना, जोर से बोलने की आदत नहीं, इसमें गड़बड़ हो रही, कोई बात नहीं। देखो उनको ऐसा कहना है कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव के, वह चौथा गुणस्थान वाला है ना, तो उसके सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अहोभाव के जो परिणाम है, आदर के परिणाम है, भक्ति पूजा के परिणाम है, वह भूमिका अनुसार आने वाला राग। अभी पांचवे गुणस्थान वर्ती जी होगा उसको ये राग आएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो आएंगे ही, समझना। छठे गुणस्थान वर्ती जीव को, उनको भी देव गुरु को और शास्त्र को पूजन करने के वगैरह परिणाम आएंगे, ख्याल में आया। नहीं तो देखो ये किस पर से हम नक्की करते हैं कि जो छठे गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज है, जो आहार वृद्धिधारी है, आहारक वृद्धिधारी जो है, वे जिनेन्द्र की वंदना करने के लिए जाते हैं ना, तो उनको भी भगवान की वंदना करने के परिणाम अभी बाकी है, या उनके वो नहीं होते ऐसे नहीं। तो एडिशनली क्या है कि ये पंचम गुणस्थान वर्ती जो जीव है, यानी जिसे हम देशव्रति कहेंगे, देश संयम वर्ती जीव, देश संयम धारण करने वाले, उनको 11 प्रतिमा धारण करने की, यानी उसमें दूसरे प्रतिमा में जो 12 व्रत बताए हैं, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये ऐसे 12 व्रत पालन करने के, ये कैसे अनुव्रत जिसको कहेंगे, वह पालन करने के परिणाम उनके होते हैं, या 11 प्रतिमा धारण करने के परिणाम उनको होते हैं। अब आगे क्या है, ये जो छठे गुणस्थान वर्ती जीव है, वे उनको 28 मूल गुण पालन करने के परिणाम, तो भूमिका अनुसार, यानी जिनके 1 कषाय चौकड़ी का अभाव है, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो उनको उस प्रकार के उच्च यानी अच्छे प्रशस्त राग परिणाम आते हैं, लाने नहीं पड़ते।
चार कषाय चौकड़ी का अभाव वाले को कैसा शुभ राग आता है?
लक्ष्मी बहन कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के भाव आते हैं। ऐसा है, बहुत अच्छा है कि आपको खाली ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 3 चौकड़ी के अभाव से तो इधर रात की बात बताएं, तो 4 चौकड़ी वाले का क्या होगा? हाँ, तो कुछ होगा नहीं, घबराना मत, तुम्हें तो केवल ज्ञान होगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं,
पक्के है सारे।
हाँ फिर साइन वाले है ना। हाँ जुहू वाले देखा। बात तो ऐसी है बहन कि हम तो यहाँ बार बार ये सिखाते हैं कि गुरु से ज्ञान नहीं होता, फिर भी आप वही 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 पर लटक भटक रहे हैं, और अटक रहे हैं तो हम क्या करें। तो कोई किसी को मम्मी की याद आती है, तो किसी को किसको हमको, अच्छा अच्छा चलो देखो क्या कह रही, मैं तो ये पूरा करना चाहता था। चलो करेगा उसको आएगा नहीं।
उसमें तो देव शास्त्र गुरु की प्रतीति ऐसा शब्द है, उसको सच्चे देव की प्रतीति नहीं है अभी। देव का स्वरूप
इनका प्रश्न क्या है, जो मिथ्या दृष्टि होगा उसको भी देव गुरु शास्त्र पूजा करने के वो भाव करेगा ना?
हाँ,
बिल्कुल करेगा, लेकिन सम्यक दृष्टि को वो भाव आते हैं, इतना ही फर्क। समझ में आया? नहीं समझ।
रात का स्वामीपना है, करेगा और आएगा, इसकी बात।
अभी आप इतना बताएंगे तो उनका इंसल्ट कर रहे हैं, सब जानते हैं। हाँ समझ रहे, वही समझ में तो फेर है ना, समझ में ही समझ का फेर है। अभी मैं चालू करूं कि कोई बीच में प्रश्न पूछने वाला है? नहीं तो क्या है, कल मैं ये चाहता था कि कल वो शास्त्र चुलो चालू करेंगे, तो अभी तो ये पूरा ये भी लाना पड़ेगा आपको, तो वह सब तो होने आए। चलो देखो, निर्मल आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता में भूमिका अनुसार शुभ राग आता है, ये आप समझ में आए? प्रति बताइए। हाँ नहीं समझ में आया तो पूछना आपका फर्ज है, लेकिन क्या पता हमको क्या मालूम पड़ेगा कि आपको समझे क्या नहीं, लेकिन हम पूछते हैं उल्लू के जैसा कि आपको कितना मालूम है, और बिल्कुल ऐसी बात निकलने की मालूम नहीं होता है। हाँ? क्या करें देखो, इसलिए उसे यानी किसे, उस शुभ राग को, कौन से भूमिका अनुसार शुभ राग को सहचर जानकर सरा चारित्र कहते हैं, व्यवहार नहीं का विषय है। यह बात सही है, राग की अस्थि है यह बात भी सही है, किंतु राग वह चारित्र नहीं है, ये उससे भी सही बात है, ऐसा कहते हैं। अनंत, हाँ बोलो बोलो, बोलना चाहते हैं। अनंत काल से सत्य असत्य का निर्णय नहीं हुआ, धर्मी को शुभाशुभ राग आता है, किंतु उन्हें निरंतर राग रहित स्वभाव की दृष्टि पड़ी है, भेद ज्ञान वर्तता है। अशुद्ध शुद्ध दो भाग है, उनका विवेक है, यदि पूर्ण शुद्धता हो तो वीतराग हो जाए और पूर्ण अशुद्ध हो तो मिथ्या दृष्टि हो, अतः साधक को आंशिक शुद्धता और आंशिक अशुद्धता रहती है, फिर भी स्वसन्मुखता की मुख्यता और हेय उपाधेय का ज्ञान उन्हें यानी साधक को यानी चौथे गुणस्थान से आगे वाले बारहवें गुणस्थान तक के जीवों को क्या कहते हैं, स्वसन्मुखता की मुख्यता और हेय उपाधेय का ज्ञान उन्हें सदैव वर्तता है, पर पदार्थ भिन्न है, विभाव कृत्रिम है, वह स्वयं के दोष से होने वाली विपरीत अवस्था है, उससे रहित शुद्ध चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा व ज्ञान करके उसमें लीनता करना ही चारित्र है। आगे की बात कर, जावाणी के ज्ञान के तुझे लोकालो सो वाणी मस्त कणो सदा देश। मनीषा बेन बोलो। बोलो जिनवानी माता की आए समझी।